सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैंगते श्री शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल में तयारी उठे सतत केवल ज्ञान पाने उठे सतत केवल ज्ञान बोले भगवान महावीर स्वामी की आचार्य कुंदकुंद स्वामी की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज
सब लोग जैसा कि हमने पहले दिन के निर्णय लिया था कि हम आने वाले दिनों में अपने जीवन को निर्मल बनाने की बात न करके अपने जीवन को निर्मल बनाने की प्रक्रिया कर लेते हैं, फिर भी उस प्रक्रिया के दौरान हमें किस तरह अपने अनुभव को पुराने लोगों के अनुभव से मिला के देखना चाहिए, इस बात पर जरूर हम कुछ बात करेंगे। हम देखेंगे कि लोगों ने अपने जीवन को निर्मल बनाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई थी उसमें उन्होंने किस प्रकार अनुभव किया, उनके अनुभव और हमने जो इस प्रक्रिया के दौरान अपने परिणामों को निर्मल बनाने के लिए जो प्रयत्न किया है उसके परिणामों में कितना सामंजस्य है। जब कोई समय सार पढ़ने वाला समय सार पढ़ता है तो समय सार ही हमें क्या कोई अनुभूति देता है क्या? यदि हम अनुभूति कर रहे हैं तो वो हमारी अनुभूति को निदान करके उसे वही पढ़ करता है, उसे प्रामाणिक घोषित करता है कि हाँ वह रोज सर्वोच्च अब ठीक है, चलिए आगे और आगे चलिएगा, आपको इस तरह की अनुभूति हो। शायद पूजा के बदले में इसी प्रकार से अगर हम देखें कि लोगों ने यह कि हमारे पहले हमारे जो पूज्य आचार्य भगवंत हुए हैं उन्होंने हमें पूजा के बदले में क्या जानकारी दी है और हम अनुभव किस प्रकार से पूजा में हमने ये सीखा था कि हमारी दृष्टि में चार बातें होनी चाहिए कि हमारा पूज्य कौन है, वो हमारे वैरागी भगवान है। पूजा करने वाला मैं स्वयं उस वैरागता का उपासक हूं या नहीं है, मेरे भीतर वैरागता के प्रति लगाव है या नहीं है, मैंने उस वैराग भगवान की पूजा के लिए अपने को पूजा के योग बनाया है या नहीं बनाया, मैं रोग शोक और व्याधि से ग्रसित होकर के पूजा करने की योग्यता हासिल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने अपने को मन को और वाणी को और शरीर को सबको निरोग बनाने की कोशिश की है। ये मेरी अपनी मौजूदा स्थिति है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़े। और फिर पूजा की प्रक्रिया क्या है, पूजा की प्रक्रिया का मतलब है कि पूजा का डिसिप्लिन क्या है, पूजा का अनुशासन क्या है। अनुशासन यही है कि मैं मुकुट बांध के आऊंगा तो जरा मेरा मन अलग तरह का होगा, मैं सुबह के कपड़ों में आऊंगा शुद्ध वस्त्र में आऊंगा तो अलग मेरा मन होगा। हमें जितनी अधिक शालीनता बाहर से रखूंगा उतना मेरी भावात्मक स्थिति सुदृढ़ होगी, अच्छी होगी, इसलिए तो हमने मुकुट भी पहनना है, क्या आवश्यकता थी ऐसी? तो हम जब शादी होती है तब भी जिसकी तो वो भी मुकुट पहन देता है, उसमें उसमें पूरा अनुभव करने की चीज है। यहां मैं मुकुट बांध के आया हूं, अपने को इंद्र मान रहा हूं इन क्षणों में, और मैं जिस प्रकार के अनुशासन में बंध हुआ हूं, मैंने अपने को जिस तरह के अनुशासन में बांधा है, वो मुझे क्या संदेश दे रहा है? ये पूजा का डिसिप्लिन, पूजा की विधि और पूजा का फल, मैं जब यहां से बाहर निकलूं तो अपने हृदय पर हाथ रख के स्वयं देखूं कि मेरा राग द्वेष कितना कम हुआ है, मेरे भीतर वितरागता कितनी हुई है, ना सही इससे बाहर निकलने पर, इसके भीतर ही सही। जिन क्षणों में मैं पूजा कर रहा हूं उन क्षणों में मेरे भीतर कितनी वितरागता हुई है, अगर ये हम ध्यान में रखें और अपने अनुभव को निरंतर परिमार्जित करते रहें, तो 8 दिन के बाद हम स्वयं पाएंगे कि जो लिखा है आचार्य भगवंतों ने कि फल पाए नैना रानी, तो नैना रानी ने जो फल पाया था वो फल मुझे भी मिल गया है। मुझे किस रूप में मिला, उन्हें किस रूप में मिला था, ये डिफरेंस हो सकता है। उन्होंने भी अपने अनंत काल के संचित कर्मों को ढीला करके नष्ट किया होगा, और साता के उदय में उन्होंने अपने पुत्र को ठीक कर दिया होगा। मैं भी अपने असाता को नष्ट करके साता के उदय में क्या प्राप्त करता हूं, ये मेरा अंतर्विरोध हो सकता है, पर मेरी उपलब्धि मुझे अपने परिणामों से ही होने वाली है, इस बात का भरोसा हो जाए। बस ये भरोसा करना है। मैं सोच रहा था कि पूजा का ये अनुष्ठान विस्तारने की आवश्यकता है, तो फिर मुझे ही मेरे भीतर से ऐसा लगा कि जैसे जवाब मिल गया हो। जवाब इतना ही है कि मुझे बहुत बातों का अनुभव नहीं है, इसलिए उन बातों का मैं अनुभव करूंगा, और जिन बातों का अनुभव है मुझे, मुझे धर्म की जिन बातों को मैं सुनता हूं उनमें मेरी दृढ़ता नहीं रहती है, वो जनता इस अनुष्ठान से बोली कि हां सच्ची बात तो लिखी ठीक ऐसे ही तो होता है। तो ये जो कंफर्मेशन है, मैं सोचता हूं कि हम इस पूजा की प्रक्रिया में कंफर्मेशन कर रहे हैं, हमने जो सीख रखा है उसको कंफर्म कर रहे हैं, उस कॉपी रखो, क्या ऐसा दृष्टिकोण लेकर के हम इस प्रक्रिया को कर रहे हैं, तब तो हम जरूर लाभ प्राप्त करेंगे। और भी हमारे कई दृष्टिकोण हो सकते हैं, मैं उन सब दृष्टिकोण से बात करने के लिए मैं नहीं हूं, आप पता नहीं किस दृष्टि से पूजा कर रहे हैं वो आप जानिएगा, पर दृष्टिकोण मेरे ख्याल से पूजा का यही होना चाहिए कि इन चार बातों पर हमारा ध्यान है और हम पूजा की प्रक्रिया कर रहे हैं। अब हमने बहुत सारी द्रव रख रखी है, हालांकि द्रव को देख करके मैं थोड़ा सा निराश हूं, पर नहीं होना चाहिए मुझे निराश, क्योंकि मैंने और दूसरी जगह जो पीले और चमकीले चावल देखे हैं वो यहां दूर दूर तक मुझे नजर दौड़ाने पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। कोई बात नहीं, हो सकता है कि कल से और शेष द्रव आए, संभव है कि हमारे परिणामों में अगर श्रेष्ठता आएगी तो कल से तो हो सकता है कि हम खुद जाएं और वहां पुजारी से कहें कि पुजारी ये मजा नहीं आया, थोड़ा इस तरह आज तो मैं भी आपके साथ पूजा कर बनाऊंगा, मैं भी और फिर आप बढ़िया से बनाऊंगा, एक भी टूटना नहीं चाहिए, बहुत समझ के हमारे पंडित जी से दामोदर दास जी पंडित जी नहीं रहे, हम मेरे पूजा की थी, हमारा सौभाग्य की उसके थोड़े दिन के बाद हो गए, लेकिन मैंने उनसे धोना सीखा था, बलबन का कपड़ा रखा जाता था और चावल को झट से पानी डाल करके और निथार दिया जाता था, और फिर उसके बाद वे सारे चावल बलबन के कपड़े पर हल्के से दबा करके और फिर धोए जाते थे ताकि पूरे साफ हो जाए, फिर पानी एक बार डाल के फिर ज्यादा देर तक रखेंगे उसमें तो वो गल जाएंगे और टूट जाएंगे, वो बहुत स्टाइल उठती है, और फिर उसके बाद इतना सा होने के बाद उसमें चंदन डाल करके उनको रंगना देंगे फिर भी नहीं टूट रहे, तो बहुत समझे हुए हाथ होंगे, बहुत भावनात्मक, बहुत कोमल उस समय मन होगा, तब तो वो चावल लगे गए हैं, और फिर बाद में चुनना उनको कि इसमें से कौन से खरे खरे हैं, अरे तो नहीं कहे तो कि जिसमें से चुनना पड़े खरे खरे तीन एक ना टूटे, मैं तो वो प्रक्रिया करने के लिए यहां पर आया हूं, ये पूजा की द्रव क्यों सजाई गई है, क्या आवश्यकता है, मेरे परिणामों में बहुत निर्मलता है और इसकी क्या आवश्यकता है, ये मेरे लिए आलंबन है। मैं इन क्षणों में ये विचार करूं कि मेरे लिए आलंबन है। भैया ऊपर चढ़ना हो और रस्ती बढ़िया बढ़िया नाइलॉन की हो और जगह जगह वो मैं गांठ है लगी हुए, हिम्मत न पर चढ़ जाओ पकड़ लें कहा तो कौन सी खुल गई जमीन के लेकर। जब हम इतना विचार करते हैं वहां संसार के कामों में और यहां पर जिस चीज का आलंबन लेकर के हम परिणामों की ऊंचाई पर चढ़ना चाहते हैं और हमारा आलंबन कैसा है ये विचार नहीं करेंगे। कौन से चावल हाथ में आए हैं जो मैं खाना नहीं पसंद करता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चावल हाथ में आ गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे आए हैं, पर इतना विचार तो करना पड़ेगा। जो हम लोग कई बार धर्म का विचार नहीं करते हैं तो मैं सोचता हूं कि नहीं उसका भी विचार अनिवार्य है, क्योंकि मैं जैसे रस्सी का विचार करता हूं कि ये रस्सी मुझे ऊपर तक पहुंचा देगी कि नहीं, ये आलंबन ठीक है या नहीं, ये नाव जिसमें बैठ के मुझे उस पार जाना है छेद युक्त तो नहीं है या कि इसका लंगाना कैसा है और उसकी पतवार कैसी है, कहीं बीच में धोखा तो नहीं दे जाएगी। वैसे तो ये मुझे अपने परिणाम संभालने के लिए खाली सजा की रखी हुई है, जरा भी सिस्टमेटिक नहीं मालूम पड़ रहा है मुझे कि नहीं समझ में आ रहा है कि किस में चढ़ाए गए हैं, किस में से चढ़ाए गए हैं और कहां क्या है। एक एक स्क्रिप्ट की एक सिस्टम होना, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। आप देखिएगा फिर इसको वैसा रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल भी कि आपने गलत किया, मैं ये कह रहा हूं कि और बेहतर कैसे किया जाए। अगर इसके बेहतर करने से मेरे परिणाम सुधरते हैं तो क्या हर जाएगा, कोई हर जाए नहीं है। मैं तो ऐसे ही सीखूंगा ना, रोज रोज और बेहतर करना सीखूंगा तो अपन देखेंगे कि इसका भी असर पड़ता है। बाह्य क्रियाओं का मैंने पिछले दिनों कहा था कि ज्यादा ध्यान नहीं देना, इसका अर्थ अगर आपने कुछ भी करना ले लिया हो तो थोड़ा संभाल लीजिएगा। बाह्य क्रियाओं का भी बहुत महत्व है, कांच के सुंदर गिलास में और बहुत बढ़िया पिस्ता डला हुआ केशर डला हुआ दूध भरा है और मैं जरा सी उसकी बाहरी आवरण पर गंदगी लगा दूं, आपको पीने दे दूं, आपका मन भी करे। कर रहे किसी का तो मैं तो नहीं जानता कि कोई सही आदमी होगा, गंदगी ऊपर लगी हुई है कांच में भीतर तो बहुत अच्छा बैठा हुआ है नहीं। जैसे हमारा मन ज्ञान से भर जाता है ऐसे ही बाह्य आलंबन अगर अच्छी है तो हमारा मन भी उत्साहित होता है, बाह्य आलंबन अगर अच्छे नहीं है तो हमारा मन भी जो है वो डल हो जाता है, हमारा मन भी उत्साहित है। तो इन पर भी हम थोड़ा सा स्मृति पर भी ध्यान देंगे, अपने वस्तुओं की शुद्धि पर भी ध्यान देंगे। इस तरह हम बाह्य वस्तु अनूल्य मखदान्य मैलिक लेकम, मैं बहुत प्रकार की वस्तुओं के द्वारा अपने परिणामों को उनके आलंबन से और निर्मल करने आया हूं और जैसे ही मुझे इसके द्वारा जो पुण्य अर्जित हो गया समग्र पुण्यम जुगो, और मैं वही इस सारी संपदा को छोड़ करके बाहर जाने वाला हूं, मैं इससे कुछ पाने नहीं आया था, मैं जो पाने आया था वो मेरे साथ में ले जाऊंगा, बाकी सब यही के छोड़ जाने। ऐसी किसी भाव दशा के साथ अपन शुरू करते हैं। मैं उस आलंबन पर आज बात करना चाहता हूं जो आलंबन हमने सजा रखे हैं। मेरी दृष्टि सबसे पहले पहुंच गई इसलिए पहुंच गई, मेरी किसी भी बात को आप कमेंट मत मानिएगा प्लीज, मैं आपसे ये पहले कह दे रहा हूं। मेरी दृष्टि सबसे पहले गोने पर पहुंच गई, मैंने ब्रह्मचारी जी को भी कहा कि बस जरा सा उसकी ऊपर की खोल निकाल के और चला दिया, अरे थोड़ी मेहनत कर लेते, हम तो रात से बैठते थे और एक एक के हाथ में कई कई बार लग जाता था लेकिन वो छीलना सिखाया जाता था कि पूरा गोला छीलना थी एकदम सफेद और फिर उसके ऊपर हमने चंदन लगाया है, फिर उस पर रखा हुआ है दीप और वो जलता है जब, तो सैकड़ों लोग देखते हैं तब आनंद आता है, हमने तो ऐसा कर ही नहीं पाया। पर इसको करके देखिएगा, अगर आनंद नहीं आए तो परसों से तो इतना भी मत छीले जैसा ऊपर से छीला है, फिर तो जैसा करना वहीं से सीधा ना बोला भी नहीं चला देना आराम से, अगर आनंद नहीं आए छीलने का बैठे हैं और छील रहे हैं और बड़ी सावधानी से जैसे जैसे वो सफेद निकलता जाता है ये थोड़ा और सफेद हो जाता है, ये थोड़ा और सफेद हो जाता है, ये सफर रह जाए वो क्यों रह जाए उसको भी निकाल दो, ऐसा लगेगा खीर के वक्त जितना स्वच्छ हो जाएगा उतना मन भी निर्मल होगा कि आह हम थे मैंने कुछ प्राप्त कर लिया, इससे सिर्फ शरीर ने क्या प्राप्त कर लिया, शरीर में भी परिणामों को मैंने निर्मल कर दिया। देखो द्रव्य भी बना रहे हैं तो परिणाम निर्मल हो रहे हैं, और जब द्रव्य चलाएंगे और फिर आह्लादित होकर वापस लौटेंगे कि आप तो आनंद आ गया। हम तो ऐसे ऐसे भाव दशा के लोग हैं कि हमने छोटे छोटे से कामों में भी अपने राग द्वेष को कम करने की प्रक्रिया अपनाई है। अगर हम इस तरह की प्रक्रिया करेंगे तो ये आठों द्रव सार्थक होंगे, और नौवां कोई द्रव्य नहीं होता है लेकिन होता भी है। नौवां कोई द्रव्य नहीं है, मैं अब उसको बनाता हूं खुद। आठ द्रव बने बनाए आते हैं, नौवां मैं बनाता हूं, और वे आठ अलग अलग ना हो जाएं, इसलिए उन आठों को इकट्ठा करके अपने भावनाओं की चाशनी में पाग करके अनर्घ पद की प्राप्ति के लिए अर्घ बनाता हूं। कोई कह दे कि आठ है, एक ही है, वहां आठ द्रव्य नहीं दिखाई पड़ते। कोई कह तो दे कि ये नौवां द्रव्य है, हम कहते नौवां मत कहो उसको, ये तो आठ ही द्रव्य है, ये मेरा अर्घ है। मैंने इन आठ द्रव्यों से खुद अपने परिणामों की चाशनी में उसे पाया है और फिर बना। देखिएगा उन आठ द्रव्यों में क्या ताकत है, और आठों द्रव्यों के साथ जो हमारी भावनाएं हैं उनकी क्या ताकत है, उनकी क्या निर्भरता है। जल चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं, क्या मैसेज कन्वे हो रहा है, क्या मैसेज मिल रहा है जल चढ़ाने से कि जल की धारा छोड़ो। जल ज्ञान का प्रतीक है, जल वैसा ही निर्मल है जैसा निर्मल ज्ञान होता है, वैसा ही स्वच्छ है वैसा ही, जैसे कि ज्ञान प्राप्त होने पर स्वच्छता आती है, प्रसन्नता आती है। जल अच्छ जल संहिता कहते हैं आचार्य भगवंत, जल के समान स्वच्छ और प्रसन्न होते हैं। जल स्वच्छता और प्रसन्नता का प्रतीक है। मैं अपने भीतर की मलिनता जो कि ज्ञान पर आवरण होने से आती है, उस अपने ज्ञान के आवरण की मलिनता को दूर करने के लिए जल चला रहा हूं, मेरा ज्ञान निर्मल हो। तो मेरे पास ज्ञान तो पहले से है, उसमें निर्मलता कहां से आएगी। निर्मलता आती है राग द्वेष कम हो। देखिए बात यही हो, ज्ञान कौन सा निर्मल है, कहते जिसमें राग द्वेष जितना कम है वो ज्ञान निर्मल है, और जो सिर्फ राग द्वेष सिखाए वो ज्ञान किस काम का हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा ज्ञान। मैं कल तक इनके बारे में कुछ नहीं जानता था, तो कल तक मेरे परिणाम इनके बारे में निर्मल थे, आज मुझे चार बातें इनकी मालूम पड़ गई, तो उनका तो जो है तो भी मेरे चार उनकी बात जानने से मेरे परिणाम कलुषित हो गए, तो क्या मतलब है मेरे ज्ञान का। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मेरे बाजू वाले कौन खड़ा हुआ है जो कि पूजा कर रहा है, मेरे परिणाम उसके बारे में कैसे हो रहे हैं, मेरा ज्ञान उसके बारे में कैसा है, कभी अपन ने विचार किया। छोटी छोटी बातें हम दूसरे के बारे में जानते हैं और अपना मन कलुषित करते हैं, और बड़ी बड़ी जा बातें भी हम संसार के बारे में जानते हैं फिर भी अपना मन निर्मल नहीं कर पाते हैं, तो वो ज्ञान किस काम का। मैं यहाँ पर जल चढ़ा रहा हूँ कि ये जल की धारा वहां तो गिर ही रही है, मेरे ऊपर भी वो जल की धारा गिरे और मेरे ज्ञान को निर्मल कर दे, मेरे ज्ञानावरण कर्म को ही नष्ट कर दे, तो मेरा ये जल चढ़ाना सार्थक हो गया। और जल बहुत बड़ा मैसेज देता है कि जिसमें डाल दो, धूल में डाल तो कीचड़ बन जाए, और सीप में गिर जाए तो मोती बन जाए, और गन्ने में गिरे तो मीठा हो जाए, और नीम में गिर जाए तो कड़वा हो जाए। बड़ा मजेदार है ये पानी, ये क्या मैसेज दे रहा है कि सावधान रहना, जब कोई बात इस तरह पवित्र होना चाहता है तो सावधानी रखना पड़ेगी कि कहां गिर रहे हो, कहां झुक रहे हो। निर्मलताओं की तरफ झुकोगे तो वो निर्मलता मिलेगी, अपवित्रता की तरफ झुकोगे तो अपवित्रता ही मिलने वाली है। पानी हमें सबके बीच मिक्सअप होना सिखाता है। क्या सिखाता है, हम सबके बीच मिक्सअप हो सकें, हम मिल सकें, अच्छाइयों के साथ मिलकर के हम इतने अच्छे हो सकें कि फिर हमारे भीतर बुराइयों का असर ही नहीं। एक बार मोती बन जाने के बाद धूल में भी फेंक दो तब भी मोती को मलिन नहीं कर सकता कोई। वही प्रक्रिया यहां पर है। मेरी निर्मलता इतनी अधिक हो जाए इन क्षणों में कि बाहर की मलिनता फिर मुझे कलुषित ना कर पाए। क्या पानी इस तरह का महसूस नहीं देता? हमें लेना चाहिए। वो नहीं बोलता है पर हम तो हम उससे यह संदेश ले सकते। फिर द्रव बहुत महत्वपूर्ण हो गया। फिर पानी ऐसे नहीं डाला जाएगा कि है का उन्हें देखी ना डाल जल की कह रहे हैं। नहीं वो तुम पहले से तैयार खड़े हुए हैं कि आपने जलम कहा उसके पहले ही हमने मन बना लिया था कि ये गिरी जल की धारा वहां नहीं यहां गिर गई ऐसे। और वो भी नहीं दिख रहा है मुझे कि कहां डालते होंगे जल। दो अलग अलग रखे रहते हैं जिनमें कि जल और वो चम्मच से क्या अरे उठा के पूरा ऐसे डालो चम्मच से क्या चुल्लू चुल्लू चिंतित डालते हैं पुष्प चलाते हैं कैसे चलाते हैं ऐसे उठा करके चलाते हैं। नहीं डिसिप्लिन क्या है अपने मन की भावनाओं का पुष्प तो हमेशा ऐसे ही चलाए जाते अब इतने मौन आ जाइए सब तो अब इतने मिले हैं तो पता है तो इतने पड़ते हैं यहां से थोड़ी मिलेगी फिर तो वो ना कर दिया तो वो जो चलाए बैठते से करूँ का है अरे ऐसे कर रहे जी मजा नहीं आया उसने इसे ऐसे करो ऐसे पूरे भरे हुए और आपको वो जब जब पुष्प बोलेंगे तब तब झरना शुरू हो गया पुष्प की भांति ऐसे झर रहा है और मैं खुद देख रहा हूं झरते हुए दूसरे के नहीं देख रहा हूं मेरे खुद यही झर रहा है। कैसे द्रव बनाए होंगे कैसा हमें आलम्बन दिया है परिणामों के निर्मल होने के लिए मैं तो जब जब सोचता हूं तो दंग रहता है। इतना एक हो जाता है इतनी तल्लीनता सज जाती है पूजा के द्रव के साथ में कि ऐसा लगता है कि द्रव को उधर विसर्जित हो रहे हैं मेरे पास यहां विसर्जित होते चले जाए। चंदन आ गया है हाथ में और चढ़ाने का मन है। चंदन दृष्टि को शीतल कर देता है। हम क्या देखना चाहते हैं हम कैसे देखना चाहते हैं हम दूसरे व्यक्ति के जीवन में क्या अंधेरा डालना चाहते हैं घाव पैदा करना चाहते हैं या सब कुछ उसे शीतलता देना चाहते हैं। चंदन हमारे हाथ में हमारे भाव आताप को मिटाने के लिए हम चढ़ाएंगे चंदन लेकिन रोजमर्रा के जीवन में भी देखेंगे कि किसी के संताप में मेरा जीवन कारण तो नहीं बन गया है। मेरे भाव का संताप अगर मुझे मिटाना है तो मुझे चंदन भी चढ़ाना है और दूसरे के जीवन में संताप उत्पन्न न कर दूं मेरा जीवन ऐसा मुझे बनाना है तब तो फिर चंदन भी चढ़ाना सार्थक हो। मैं दूसरे के जीवन में संताप पैदा करूं और अपने जीवन के भाव आताप मिटाने के लिए 100 दफे भी चंदन चढ़ाऊं तो मेरा चंदन जो है मेरे आताप को मिटाने में कोई मदद नहीं करे मेरा आलम्बन झूठा हो जाए ऐसा विचार मेरे मन में उसी क्षण आना चाहिए जब मेरे हाथ में चंदन आ गया कि ये मुझे क्या महसूस दे रहा है कि किसी को अगर घाव हो जाए तो उसे शीतलता देने के लिए चंदन लगाना चाहिए। जब एक राजा को दाह ज्वर हुआ था तो चंदन लगाया जाए शीतलता के लिए तो चंदन घिसा जाता है। सैकड़ों रानियां थी उन राजा की और सबने चंदन घिसना शुरू किया था लेकिन सबके हाथ में आभूषण थे और चंदन घिसते वक्त वे आभूषण टकरा करके बहुत ध्वनि उत्पन्न करते थे तो संक्लेष और बढ़ गया। चंदन घिसा जा रहा है लेकिन राजा को संक्लेष हो रहा है कि इतनी तेज इतनी कर्कश आवाज क्या कर रहे हैं। चंदन तो जब आएगा जब लगाया जाएगा अभी तो इतनी तकलीफ पहुंचाई जा रही है। मंत्री फौरन गए कि चंदन भी घिसा जाए और इसके पहले कि चंदन वहां तक पहुंचे जीवन में उनके और अधिक पीड़ा ना हो इसका भी ध्यान रखा जाए। तो सबने कहा कि वो हम कर लेते हैं अभी सिर्फ एक एक चूड़ी रखी बाकी सब उतार के रखी फिर चंदन घिसा जाए। राजा को संदेह हुआ कि इतनी तेज आवाज आती थी और अब तो सारी आवाज गायब हो गई क्या मेरे उपचार के लिए चंदन घिसना बंद कर दिया। नहीं राजन बंद नहीं किया है चंदन फिर भी घिसा जा रहा है और बस आता ही होगा चंदन तो फिर आवाज क्यों नहीं आ रही? अब आवाज नहीं आ सकती, पहले क्यों आ रही थी? बहुत सारे आभूषण थे, अब सबने एक एक आभूषण ही रख रखा है। अच्छा, दो होने से आवाज आती है, एक होने पर आवाज नहीं। अब अगर मैं इस दाह ज्वर की पीड़ा से बच गया तो एकाकी होकर ही विचरण करूंगा, मैं तमाम इस अपने फैलाव को छोड़। अब शीतलता मिलना शुरू हो गई है, अभी चंदन आया नहीं है बच करके, लेकिन परिणाम में शीतलता आना शुरू हो गई है। और कहते हैं कि दाह ज्वर तो चंदन से मिटा होगा तो मिटा होगा, पर अपने परिणामों की निर्मलता से वो दाह ज्वर भी मिट गया कि मेरा यहां कौन है, मैं एकाकी आया था, एकाकी चला जाऊंगा। क्या चंदन हमें ये मैसेज नहीं देता है? देता तो है कि मेरा अपना जीवन, मैं यहां अपने सुख दुख का स्वयं भोगता करता स्वामी हूं, कोई मेरे सुख दुख में सहारा नहीं बन सकता। मैं अवश्य दूसरे के सुख में बनना चाहूं तो सहारा बनूं, पर दूसरे के दुख के कारण न बनूं, ये सावधानी मुझे रखनी पड़े। बस इतना ही मैसेज अगर चंदन से लेना चाहें तो ले सकते हैं। चावल हाथ में आ गए हैं, उनको मैंने अक्षत की तरह माना है, क्योंकि वे टूटे नहीं है, वे अक्षत है, अखंड है, और वे ऐसे सीधे सीधे बोने से प्राप्त नहीं हुए हैं, वे धान से परिष्कृत होने पर आवरण हटने पर मुझे प्राप्त हुए हैं, और धान के आवरण को हटा करके उसकी लालिमा को हटा करके मुझे वो उज्जवल चावल मिले हैं, जिनको दो अंगुलियों के बीच अगर जोर से दबाया जाए तो अंगुली में दर्द हो सकता है, लेकिन टूटेंगे नहीं, वो अपनी अखंडता बनाए रखते हैं। करना मत ऐसा। सिर्फ एक मैसेज है उस अखंडता, मैं भी संसार के बीच अपने उस आवरण और उस लालिमा को हटा करके अखंड होने की कोई प्रक्रिया करूंगा, या कि सिर्फ चावल ही अखंड चुनने की कोशिश करूंगा? ठीक है, वो कोशिश भी मुझे करनी है, लेकिन जिन क्षणों में मैं वो अखंड चावल चुन रहा हूं, उन्हीं क्षणों में मेरे भीतर भी उस अखंडता के लिए ललक जागृत होनी चाहिए कि मेरा टूटा टूटा जीवन तो नहीं है। कितने चेहरे लगा करके मैं सुबह से शाम तक अपने जीवन को जीता हूं, कितना टूटा टूटा मेरा जीवन है। चावल को मुझे अखंड होने के लिए कह रहे हैं, एक धारा में जीवन पिरोने के लिए कह रहे हैं, वो अखंड चावल मुझे इस बात का संदेश दे रहे हैं। और जब मेरे हाथ में पुष्प आए हैं, वैसे तो अखंड पद की प्राप्ति के लिए चढ़ाते हैं, लेकिन रोज मरना के जीवन में थोड़े से टूटे टूटे न रहे, एक लगन लगे रहे कि सुबह जय जिनेन्द्र से यात्रा अगर शुरू की है तो सोने से पहले जय जिनेन्द्र पर ही यात्रा खत्म हो, ये अखंडता कहलाती। जिससे मिले उससे भी जय जिनेन्द्र, गद्दी पर चढ़े तो जय जिनेन्द्र, किसी के पैर छुए तो जय जिनेन्द्र, क्या चीज है ये अखंडता कहलाती। कि सुबह जब उठे थे तो सबसे पहले हाथ जोड़े थे, जय जिनेन्द्र कहकर के उठे थे, सोते समय फिर जय जिनेन्द्र, जितने काम किए हैं सबके बीच जिनेन्द्र भगवान का विस्मरण नहीं हो पाया है, ये मेरी अखंडता है। ये चावल मुझे मैसेज देते हैं कि उस अखंडता को बनाए रखना, उस नीच रास्ता का संदेश पूरे 24 घंटे बना रहे। जब पाप करने का मन हो उस समय भी जय जिनेन्द्र, फिर देखें कैसे झूठ बोला जाता है, फिर देखें कैसे चोरी करने का भाव होता है, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले इतना अधिक मन अखंडित है कि जय जिनेन्द्र का स्मरण आ जाता है। जब किसी से जोर से बोलने का मन हो, किसी को नाराज होने का मन हो, उसी समय याद आ जाए कि जय जिनेन्द्र। फिर देखिएगा, मजा देखिएगा। 5 मिनट कितनी सही, 24 घंटे के लिए नहीं कह रहा हूं, इतनी ताकत तो हमारे पास भी नहीं है कि 24 घंटे बना, 5 मिनट करके देखे ना बन, क्या दिक्कत है कि 5 मिनट पहले जय जिनेन्द्र और 5 मिनट के पीरियड में जय जिनेन्द्र और 5 मिनट पूरे हुए तब भी जय जिनेन्द्र। उन पीरियड में मैंने जिनेन्द्र भगवान के अलावा कुछ किया ही नहीं, ये अखंडता परिणाम होगी। और फिर मेरे हाथ में आ गए हैं पुष्प, मेरे काम बाण विनाश के लिए मैंने चढ़ाए। ये तो बहुत सेवन भी करूं और यहां पर पुष्प चढ़ाऊं कि कामगान बिना स्नेह पुष्पम निर्वाण थी। अरे ये दोहरा वाला मामला समझ में नहीं है।
पर कहा तुमने चढ़ाने के लिए,
कहा है चढ़ाने और ठीक कहा है। मेरी आंख सबके प्रति गड़बड़ा जाती है, उस गड़बड़ाहट को दूर करने के लिए कहा है। एक के प्रति तो मैंने खुद तय किया है, उसके प्रति जिससे मुझे अपनी परंपरा चलानी है धर्म की, उसके प्रति तो मेरे मन में कोई भाव आ भी सकता है, बाकी के प्रति नहीं आए। इसलिए चढ़ाए हैं मैंने चावल, भी तो बाहर निकलते ही साथ बाकी के प्रति आने लगे तो गड़बड़ हो जाए, तो फिर मेरा चावल चढ़ाना झूठा हो जाए। इसलिए शायद तीन ही खानों में विभाजित कर दिया। उत्तम ब्रह्म चैन्य मन आनो माता विनय सुता पहचानो, चौथे नंबर को ही रखो, तीन ही रखे और ब्रह्मचरी सद गया मेरा। बताओ मैं विवाह भी करूं, काम वासना का भोग भी करूं, फिर भी कह रहे कि मैं अनुगति ब्रह्मचरी अनुगति। हाँ ब्रह्मचरी अनुगति का मजा देखिएगा आप। इसलिए है वो ब्रह्मचर्य अनुगति की उसकी अनंत वासना हो सकती थी, वो किसी एक पे सीमित हो गई है, अनंत नहीं रही है, इसलिए कह रहे थे शाबाश आगे बढ़ो। इसी तरह तो बढ़ोगे आगे, तीन खाने मना लेना, इसके अलावा चौथी व्यक्ति नहीं डालना, माता बहन सीता पहचानो, ये मेरी मां के बराबर है। वैसा ही भाव आना चाहिए मन में, अकेले कहने से काम नहीं चलेगा कि ये मां है। वैसा ही गदगद जैसे कि मेरी मां हो सचमुच में, जब आहार देने के लिए आ जाती तो किसी से लेने का मन नहीं होता। मैं बहुत भीतर रहता नहीं है, किसी से लेने का मन नहीं होता, तो उसके बाद थोड़ी देर में कैसा लगने लगता, अगर इसकी जगह पर ठीक ठीक मेरी ही मां होती तो ले दे। नहीं मोरा मन, लेकिन अगले क्षण मैं तुरंत बिखेर करके और कर टूट करके गिर जाऊंगा, तब भी मुझे कोई मनाल नहीं है कि मैंने ठीक से नहीं दी। फूल के समान जीने के लिए कुछ महसूस देखा, क्या हम ऐसा महसूस इससे लेंगे? लेकिन मैंने दूसरी बार देखा है यहां पर, दूसरी बार एक बार शेखपुरा में देखा था कि वहां एक घर है जहां की नैवेद्य में लालू चढ़ता है, रोज का काम है। तो लालू से पूछ लो, वो कहता है कि शुद्ध रोज मिठाई मेरे जीवन में मुझे हासिल होती है, क्योंकि एक भैया जी है वो अपनी रोज की पूजा में भी घर से गिरिया में छोटी सी उनकी फिक्स बदलिया है, वो मैं बर्फी जम के शुद्ध आती है और वो नैवेद्य की जगह चढ़ती है। हमारे नैवेद्य दूसरे हैं, वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। यहां भी मैंने बाबा जी को देखा, वो कई बार जो है नैवेद्य सब कुछ का नैवेद्य ला करके चढ़ाते हैं। नैवेद्य किस बात का प्रतीक? नैवेद्य मेरे सुबह की वेदना को शांत करने के लिए है, बिल्कुल स्पष्ट की बात है। जब भूख लगती है तो वही तो चाहिए पड़ता है, सब चीजें रखो, सुधा वेदना मेरी शांत होगी। इस नैवेद्य ये बाहर की सुधा वेदना, लेकिन हमेशा हमेशा की सुधा वेदना शांत हो जाए इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तो नैवेद्य ही छोड़ना पड़ेगा। अभी नैवेद्य यहां छोड़ते हैं तब सुधा शांत होती है, अब पूरे इसे छोड़ेंगे तो पूरे इसे शांत हो जाए। ऐसी प्रक्रिया है। भगवान के सामने नैवेद्य चढ़ाने के पीछे उद्देश्य क्या है? इधर भी डालेंगे, अभी घर जाकर के डालेंगे, लेकिन यहां क्यों चढ़ा रहे हैं? कि कब तक डालें, कितना तो खा चुका मैं, लेकिन छुरा मेरी शांत नहीं होती है। मैं आपके सामने चढ़ाता हूं इस नैवेद्य को ताकि मेरी छुरा शांत हो जाए। अब मुझे घर जाके देखना पड़ेगा क्या अगर नमक कम हुआ है तो चिल्ला तो नहीं रहा। हाँ तो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां चढ़ा के जाओ कि छुरा की वेदना और वहां तो भूख भूख चिल्ला रहा हूं, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, देर हो गई मैं तक नहीं बना रहा हूं, पेड़ से क्या चिंगाई थी क्या हमारे पास मुझे आप साझा रखो, क्योंकि चढ़ा के आए हो तो थोड़े गम मखा हो अभी मैंने फिर कहीं हम भी तो रही थी पूजा करने आ रहे। ये निर्मलता परिणामों की आई के नहीं, ये भी घर जाके देखना पड़ेगा भैया, नहीं तो हम इधर तो सुधार रोग किया ना किया के बराबर, ऐसा ना मैं चुपचाप फिर नीचा करके खा लूं कि ठीक है आज इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है, मैंने पूजा करी है। नहीं वे इस तरह हमें चाहें तो संदेश दे सकता है, और सबसे बड़ा संदेश तो ये देता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपनी अकेली छुदा की वेदना पूरी कर ली हो और पड़ोसी ने आज सिर्फ पानी पिया हो, ऐसा तो नहीं। कहीं कोई मेरे आसपास मेरे देखते हुए उस नैवेद्य के अभाव में भूखा तो नहीं दिन गुजार रहा है, ये भी मुझे नैवेद्य मैसेज दे रहा है कि मैं अपने इधर मंदिर से घर तक जाऊंगा तो बीच रास्ते में कुछ कोई उसी भूख की वजह से अपने प्राण को नहीं छोड़ रहा है, तब मेरा फर्ज है कि अपने भोजन में से अगर चार रोटी मेरे पास है तो दो उसको भी देना है। ये भी मुझे नैवेद्य से संदेश ले रहना चाहिए। फिर मेरे हाथ में दीप आ गया है और दीप के बारे में क्या कहूं, वो तो सबके लिए रोशनी ही देता है। जहां जहां अंधेरा है वहां वहां पहुंच करके और रोशनी देता है। मुझे केवल ज्ञान की रोशनी एक बार मिल जाए तो फिर कभी अंधेरा नहीं होता, इसलिए मैं अपने उस मोह के अंधेरे को दूर करके केवल ज्ञान की ज्योति के लिए एक दीप जला रहा हूं। कभी कभी सचमुच का दीप भी जला देना चाहिए, चित्तों को रंग करके कब तक चलाए। कभी कभी मन में आ जाए तो एक जलता हुआ दीप हाथ में लेके उसकी लौ को भी तो देखना कहां चली जाती, ऊपर ऊपर की तरफ, तुम ऐसा थोड़ा कर दो तो थोड़ी हिल जाएगी यहां वहां, लेकिन फिर भी उसकी तरफ ऊपर। वो मुझे सिखाती है कि जिस क्षण तुम्हारे जीवन में रोशनी आएगी फिर कितनी हवाएं आ जाएं तुम्हें इधर उधर डुला भी दें, पर तुम्हारा स्वभाव तो ऊपर की तरफ जाना है। वो दीप मुझे निरंतर ऊंचाइयां छूने के लिए, प्रकाशित होने के लिए कहना है, और इतने ही नहीं वो एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन से दूसरे के जीवन में अंधेरा तो नहीं हो रहा, हमारे जीवन से दूसरे के जीवन में रोशनी ना हो पाए पर अंधेरा भी तो ना हो। मैंने बहुत पहले लिखा था जब लोगों ने कहा कि बहुत मेहनत नहीं करना चाहिए, आपको बहुत मेहनत करते हैं शरीर जीर्णशीर्ण हो जाएगा, और तो हमने कही भैया उनसे मनी में कही हम आपसे अब जोर से कह रहे कि हमने मनी में कही कि काल मरती तो आज मर जाए, मैंने अच्छे से तो जिए। और तब लिखा था मैंने कि मैं दोनों सिरे पर जलती हुई मशाल की तरह जीना पसंद करता हूं जो सबको रोशनी देके जल्दी नष्ट हो जाती है, मैं उस गीली बिसूर बिसूर कर जलती हुई लकड़ी की तरह धुआं छोड़ के नहीं जलना चाहता जो दूसरे की आंखों को तकलीफ पहुंचा। देर तक जरूर जलती है वो लकड़ी लेकिन सिवाय धुएं के कुछ नहीं करती। क्या ऐसा जीवन हम अपना नहीं बना सकते हैं जो कि रोशन और दूसरे को भी रोशनी दे, भले ही हमारा वो जीवन बहुत थोड़ा सा क्यों ना हो, जैसे कि दीपक का होता है जितना स्नेह है उतनी देर तक जले रहे। ध्यान जितना प्राणी मात्र के प्रति आपके मन में स्नेह है उतनी देर तक आपकी ज्योति जलने वाली है, आपके चले जाने के बाद भी आपकी ज्योति जलेगी। आज भगवान महावीर स्वामी का नाम क्यों लेते हैं, उनकी ज्योति क्यों जलाते हैं, उनके मन में प्राणी मात्र के प्रति स्नेह था, वो आज भी चुपता नहीं हुआ है इसलिए आज भी रोशनी जली। क्या हमारे भीतर प्राणी मात्र के प्रति इतना स्नेह है कि हमारी जीवन की ज्योति स्पष्ट जलती रहे और दूसरे को रोशनी दे। ये संदेश हमें दीपक दे रहा है। अब आ गई है मेरे हाथ में धूप और मुझे चला देनी है धूप, और देखते देखते मेरे वो धूप नष्ट हो जाएगी, धुआं बनकर के सारे बातास में आकाश में छा जाएगी, मेरे को बहुत सुगंधित कर देगी, वातावरण को सुगंधित कर देगी। ये धूप मुझे संदेश दे रही है कि जो भी मलिनताएं हैं वे जब नष्ट हो जाती हैं तो जो निर्मलताएं हैं वे सुवासित होने लगती हैं। मेरे भीतर भी ऐसे ही बहुत सारी मलिनताएं हैं, अगर मैं तपस्या की अग्नि में उन मलिनताओं को नष्ट कर दूं तो मेरे जीवन की जो वास्तविकता है, जो सुवास है, जो सुगंध है, वो उसी में से फूटना शुरू हो जाएगी, कहीं और अलग से मुझे सुगंध लेके आने की आवश्यकता नहीं है। वो तो जैसे जैसे मेरी मलिनता नष्ट होती चली जाती है वैसे वैसे मेरी गंध अंदर से फूटती चली जाती है। ये दीप, ये धूप जो है जलती चली जाती है और सुगंध बिखेरती चली जाती है, खुद नष्ट हो जाएगी लेकिन सुगंधित करके चली जाएगी। मेरा जीवन बिजली की तरह धूप की तरह निरंतर निरंतर कम होता चला जा रहा है, लेकिन मुझे देखना है कि मेरे आसपास इस जीवन से कोई सुगंध फैली है या कि मैंने दूसरे को तकलीफ तो नहीं पहुंचाई है, दूसरे के जीवन में दुर्गंध तो नहीं भर दी है। वासनाएं मन को स्वयं दुर्गंधमय बनाती हैं और दूसरे के जीवन को भी दुर्गंध देती हैं। मेरे भीतर की पवित्रता मुझे भी सुगंधित करेगी और दूसरों को भी सुगंध देगी। क्या ऐसा कोई संदेश कभी किसी दिन गीली करके धूप चढ़ाने की जगह पर और अपने हाथ से, मुझे तो वही याद है। आप कहेंगे आपने कई कितने दिन पूजा है, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली, ऐसा कह सकते हैं? 3 साल कही है यहाँ आने से पहले आचार्य महाराज के दर्शन के बाद शुरू की थी और उनके चरणों में आने पर ही बंद, और किसी ने मेरे से कहा नहीं। पर पता नहीं, वो एक जो पंडित जी थे वो मुझे हमेशा, मैंने कभी किसी को उनको टोकते नहीं देखा, लेकिन मुझे देख करके वो कहते थे ये तो बेटे ऐसा नहीं ऐसा, वो वाली धूप पर चढ़ाओ, वो कल की रखी हुई, तुम तो जवान हो, उठाओ तो हम बताते हैं, वो रेती उठाओ, वो लकड़ी उठाओ, देखो ये चंदन की लकड़ी है, घिसो थोड़ी सी धूप बनेगी, वो खेल तुम अभी तुम्हें से तो परंपरा चल रही है, वो पुरानी वाली दुकान से ला करके वो मत चला, अपने हाथ से रोज की वो लकड़ी रखी है, रेती रखी है, घिसो और कागज पर निकालो, रखो उसमें, और वो आग लाओ वहां से और उस आग में डालो और मजा दे, उसका सुगंध जो निकल रही है। ज्यादा विचार नहीं करना उसमें कि हिंसा हो रही है कि ये हो रहा है, हिंसा तो बहुत हो रही है संसार में, तुम्हें अकेले थोड़ी करने वाले, और घर जाओगे तो अब भी चरण तरह लकड़ी जलानी होगी अपने रोजमर्रा के खाने पीने की, इसलिए उठती सी धूप जलने से ज्यादा तकलीफ नहीं, किसी को नहीं पहुंचाने का भाव थोड़ी हमारा वहां तकलीफ, और शुद्ध है इसलिए उसका उपयोग कर। भाई मैं आपसे क्या कहूं, पूजा के द्रव जिसने भी चुने हैं वो बहुत बुद्धिमान, और रहा हो या नहीं रहा हो वो बहुत भावनात्मक जरूर रहा होगा, उसने पूजा के द्रव्यों को अपनी भावनाओं से मिला मिला करके, आप कभी फिर इन आठों बातों पर विचार करना, नौवीं बात नहीं मिलेगी, आठवीं ही अपना काम हो जाए। तब धूप के बाद अब मेरे हाथ में फल आ गया है, दुनिया में बहुत सारे फल पाने की मेरी चेष्टा रहती है, बहुत सारे फल पाने की चेष्टा रहती है, लेकिन वो सारे फल अब निष्फल मालूम पड़ते हैं, मेरे मन में लगन आ गई है मुझे वो फल पाना है जिसके पाने के बाद और कुछ भी पाने की आकांक्षा नहीं होती, मुझे मोक्ष फल पाने के लिए ये छोटे मोटे फल मुझे चढ़ा दो, कमल बता नहीं चढ़ा, काले होते हैं वो, अच्छे नहीं मालूम, अब बन चलो अच्छा, मन के भीतर से कुछ तो गया, और छोटी छोटे से फल चढ़ाने की चेष्टा नहीं करना कि क्या चढ़ा दी, कहना ये भी तो फल आए, देखा भाऊ काली मन, हाँ मेरी बंद हो गई, चलो चल रही चल रही, चलो बंद हो गई में आने से मेरी बने चल रही, कोई बात नहीं चलने दो, ध्यान दिए थे अपन, हमें फल कौन सा चढ़ाना है, वो फल चढ़ा देना है जिससे सारे फल निष्फल हो जाते हैं और मुझे वो फल मिल जाता है जिसके बाद मुझे कुछ और पाने के लिए नहीं रहता है। हम आपको फल की बात सुनाएं, वो पंडित जी की बात आपसे कहूं, मैंने शायद पहले भी सुनाई होगी पर इस अवसर पर मुझे लगता है कि सुनानी चाहिए। जब एक दिन उन्होंने मेरे से कहा उन पंडित जी ने कि भैया हमारी द्रव धो दो, तभी तरह ठीक नहीं, तबियत ठीक नहीं होने पर भी वे पूजा करने आते थे, मैं आपसे ये भी कहना चाहता, और अपने सोना के कपड़े पहन के और अपने हाथ में घर से, हमने कभी उनको बिना द्रव के मंदिर आते नहीं देखा, और अपनी द्रव अपने हाथ से धोकर के वही चढ़ाते थे, कभी मंदिर की थाली में से द्रव लेते नहीं देखा, जितना हमने देखा 3 बरस तक उनने कभी किसी से द्रव भी नहीं दिलवाई, अपने हाथ पांव चले तो अपने हाथ पांव तब तक उनने धोई, हमसे उस दिन कहा तो हमने कहा मेरा तो सौभाग्य कि आपकी द्रव में धो रहा हूं, धो रहा था उस समय मैंने देखा कि इसमें तो बादाम है ही नहीं, और मैं इसमें बादाम है, मैं वो क्या बोलते हैं पंचराती सुपारी, सुपारी भी नहीं है, तो फल तो है ही नहीं,
हम ही नहीं आऊंगे। क्या लड़का है किसमें नहीं है
लेकिन यह तो किसमें तो है
कि लड़के ये ही हमारा फल आए। हम तो फल की जगह किसमें ही चढ़ाते हैं। अब हमारे मन में जो है तुरंत भाव आ गया। हमने कहा पंडित जी आप किसमें क्यों चढ़ाते फल की जगह दिया हमें तो किसमें दिया तो बाहर भीतर ऐसे ही नरम नरम होने सब तो किसमें सही चला। अब देखिए ना कि कैसी भावना उस किसमें के साथ जुड़ी हुई है कि उसमें भीतर भी बीज नहीं है और बाहर भी नरम है। मुझे बाहर भीतर बहुत मुलायम होना है। मैं अभी उतना मुलायम हो नहीं पाया हूं इसलिए रोज किसमें चढ़ाता हूं। मुझे यही फल चाहिए। अब बताइए कितना ऐक हो गया उस द्रव्य के साथ। हम भी फल चढ़ाते समय क्या ऐसे ही अपने दूसरे के परिणामों से अपने परिणामों को निर्मल नहीं बनाना पसंद करेंगे। करना चाहिए। वो फल जो है हमें ये संदेश देता है कि हम क्या चाहते हैं। हम कौन सा फल चाहते हैं इस पूजा का। इस पूजा का फल तो हम निर्मलता ही चाहते हैं वितरकता चाहते हैं इसलिए फल चढ़ा। और फिर मैंने आपसे कहा था कि सारी चीजें अब एक एक चढ़ा करके मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ है। अब तो सब उठाओ और जितनी सब रखी हुई है सबको गड्ढमड्ढ करके और पानी डाल डाल के नील करने की आवश्यकता नहीं। और उसमें कि वो थोड़ा सा जो डाल दो चंदन और लूंगी फिर गीले हो गए। वो तो गीले होंगी लेकिन मेरे परिणामों से वो गीली होना चाहिए। वो मिक्सअप होनी चाहिए। वो आज नहीं मालूम पड़नी चाहिए। इसलिए मैंने नया नाम दे दिया उसके लिए। अपना मैं जल कह रहा हूं ना चंदन कह रहा हूं ना नाक्षर यह सब मेरी चीज है लेकिन मैं कहता हूं अर्घ। ये आठ में मिलकर के अर्घ के मायने होता है मूल्यवान और अनर्घ के मायने होता है अमूल्य। मैं आठों द्रव्यों को अपने परिणामों से पार करके मूल्यवान बना करके लाया हूं। वे आठों द्रव्य तो मूल्यवान थे ही लेकिन अब मेरे भावों से वो पग गए हैं तो और मूल्यवान। मेरे पास उससे ज्यादा मूल्यवान कोई चीज नहीं। मेरे अपने परिणाम मूल्यवान है उनसे मैं इस मूल्यवान चीज को आपके सामने चढ़ाता हूं अनर्घ पद की प्राप्ति के लिए। वो जो अमूल्य है उसकी प्राप्ति के लिए मैं ये सारी तरह कैसा इंतजाम हमने इस तरह अपने परिणामों के संभालने के लिए द्रव्य का किया है। अगर हम इस द्रव्य से ऐसा संदेश लें तो फिर देखिएगा कल जब अपन यहां आएंगे तो मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा तो परिवर्तन होगा। 1% तो परिवर्तन होगा। इधर से बैठ करके एक बार देखिएगा कि कैसी लगी हुई है सब कतार से और कैसे पुष्प कम से कम पुष्प तो ऐसे ऐसे ढेर सारे पुष्प दिखाई पड़ रहे हैं। दूर दूर तक ढेरी लगी है पुष्पों की और उठा उठा करके जो है पुष्प चढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ अगर अपन करते हैं और गोले रखे हुए हैं तो वो भी चमक रहे हैं और उनके ऊपर रखा हुआ है दीप जलाने के लिए कुछ तो वो भी चमक रहा है। बिल्कुल ऐसे देखते ही साथ जो है परिणाम निर्मल हो जाए। कल से जो है और थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे। एक दिन ऐसे ही करके देखेंगे। ये विचार नहीं करना कि ये तो जैसे कल वो कविता मोहन ने कहा था कि चावल चढ़ाए तो वो चले गए पुजारी की मंडी में और हमने चढ़ाए नारियल तो वो चले गए बिकने के लिए मंडी में। तो ऐसा सोच करके नहीं कि मैं तो चले जाऊं जे पे चले जाए। नहीं तो भगवान के घरे जा रहा है। तो जब भगवान के घर में जा रहे हैं तो फिर तो शेष चीज जानी चाहिए भगवान के घर में। तो इसको और थोड़ा सा समझदार और थोड़ा सा उसी में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आओ अपनी मिल जाए जितनी है वो लेकिन चढ़ाया तो जा सकता हो जाएगी क्यों कहेंगे अपन हो जाएगी तो फिर तो वो पुजारी की जमीन हो जाएगी। वो नहीं वो मामला नहीं चले। अब तो हम करेंगे कल से ये तो ऐसा जो है देखिए कितनी निर्मलता आती है उन क्षणों में और मन में एक संकल्प आ गया कि नहीं हम ऐसा करेंगे। बस यही चीज है। हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इसकी मैं बिल्कुल चिंता नहीं करता हूं पर मैं संकल्प करता हूं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। हो सकता है कि कल मैं न कर पाऊं ऐसा लेकिन आज मेरा संकल्प है कि कल मैं ऐसा नहीं करूंगा। कल मैं द्रव्य भी अच्छी बनाऊंगा उतने ही नहीं कल मैं अपने परिणाम भी अच्छे बनाऊंगा। मैं आज संकल्पित हूं तो कल जरूर से जितना बड़ा संकल्प है उसका 1% भी अगर मैं सफल हो गया तो ठीक है मेरी सफलता इतने में ही मैं मान लूंगा। इस तरह से जो है मैं सोचता हूं और आगे आने वाले दिनों में और बेहतर ढंग से और अपने परिणामों को रोज रोज मानते जाएंगे और पवित्र बनाते जाएंगे। इसी भावना के साथ कि हम सबका मन खूब निर्मल हो और हम अच्छे से इस अनुष्ठान को करें। आचार्य महाराज की कृपा से हम सबको ये सौभाग्य मिला है, उसी को अपन लोग स्मरण में रख करके और उन्हीं के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि।
संकल्प करता हूं कि मैं ऐसा ही करूंगा। हो सकता है कि कल मैं न कर पाऊं ऐसा, लेकिन आज मेरा संकल्प है कि कल मैं ऐसा ही करूंगा। कल मैं द्रव्य ही अच्छी बनाऊंगा, इतना ही नहीं कल मैं अपने परिणाम भी अच्छे बनाऊंगा। मैं आज संकल्पित हूं तो कल जरूर से, जितना बड़ा संकल्प है उसका 1% भी अगर मैं सफल हो गया तो ठीक है, मेरी सफलता इतने में ही मैं मान लूंगा। इस तरह से जो है मैं सोचता हूं और आगे आने वाले दिनों में और बेहतर ढंग से और अपने परिणामों को रोज रोज मानते जाएंगे और मुक्त बनाते जाएंगे। इसी भावना के साथ कि हम सबका मन खूब निर्मल हो और हम अच्छे से इस अनुष्ठान को करें। आचार्य महाराज की कृपा से हम सबको ये सौभाग्य मिला है, उसी को अपन लोग स्मरण में रख करके और उन्हीं के चरणों में प्रणाम करते हुए बड़े आचार्य विद्यासागर मुनि।